मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। एक बार अयोध्या में राम राज्य के बाद एक सभा में चर्चा छिड़ पड़ी कि राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। तो किसी ने कहा राम बड़े, किसी ने कहा नाम बड़ा। बोले दत्त तेरे के नाम बड़ा, नाम तो ये लिख दिया रा और मा, और राम खुद इतने बड़े, उनका इतना बड़ा सामर्थ्य, भगवान का नाम तो इतना सा, चाहे कोई लिख ले, भगवान तो चाहे कोई थोड़ी बना सकता है, भगवान का नाम तो चाहे कोई लिख दे, चाहे कोई बोल दे, लेकिन भगवान तो चाहे कोई नहीं बना सकता। दूसरों ने कहा भाई तुमको पता नहीं, भगवान का नाम नहीं होता तो भगवान का पता भी नहीं चलता। आम बोलने से आम खड़ा हो जाता, हाथी बोलने से हाथी जरा सा शब्द है कितना बड़ा हाथी सामने आ जाता है मन से। तो नाम ही से नाम बड़ा। किसी ने कुछ तर्क लड़ाया, किसी ने कुछ व्याख्या की, किसी ने कुछ दृष्टांत दिए, तो किसी ने कुछ अपनी युक्ति पेश की, किसी ने कुछ कोटेशन दिया, तो किसी ने कुछ कहानी सुना दी। दिन भर चलता रहा धमाधम दे धमाधम। आखिर कोई निर्णय बहुमति से कोई निर्णय नहीं हुआ। और जिस पक्ष की बात सुनो लगे अच्छी बात सच्ची बात है। शाम हो गई, दूसरे दिन निर्णय करेंगे। राम जी ने सभा पूर्ण करा दी। देवऋषि नारद गए हनुमान को बुलाए कि इधर आओ, कल राज्यसभा भरेगी, तुम आओगे, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करोगे, सरकार को प्रणाम करोगे, फिर एक एक साधु को तुम प्रणाम करते हो। हनुमान जी एक काम करो, सबको प्रणाम करना, सच्चे हृदय से जरूर करना। प्रणाम करने से चार फायदे होते, आयु विद्या बल और यश चत्वारि वर्धन्ते। आयु यश विद्या बल मनोबल, ये चारों बढ़ते हैं प्रणाम करने से, श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने से। तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन एक काम करना, वो विश्वामित्र का जब वारा आए विश्वामित्र के करीब जाओ तो प्रणाम के बदले उनको पूंछ दे देना, पीठ दे देना, और पूंछ का जरा सा सटा का मार देना चाबुक की नहीं सटा। हनुमान कहते क्या आप प्रभु क्या आप हमारा। बोले नहीं नहीं हनुमान जी, फिर मैं बैठा हूं ना, मैं विश्वामित्र के पास में बैठा रहूंगा, तुम चिंता नहीं करना, बाकी का जो होगा मैं संभाल लूंगा। हनुमान जी जानते थे कि संत की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण होती है। संत जो आज्ञा कर दे उसको करने में भले उस समय कठिनाई लगती हो, ये वो लगता हो, लेकिन संत की आज्ञा कोई पुण्यात्मा ही समझ सकता है, और हनुमान जी से बढ़कर कौन होगा पुण्यात्मा। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, उस महापुरुषों की और परमात्मा की सेवा, उनकी आज्ञा पाल लो तो बड़ी सेवा हो गई। अच्छा मैं आज्ञा पालूंगा। हनुमान जी ने दूसरे दिन सबको प्रणाम किया, और विश्वामित्र की जगह पर जब पहुंचे तो पूछ कर दिया, पीठ कर दी। नारद जी ने कहा देखो आपको प्रणाम तो नहीं करता है, आपका अपमान कर रहा है वो हनुमान, पूछ दिखा दिया आपको। हाय हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम मेरे शिष्य हो, इधर आओ। राम जी गद्दी से उतर के आए गुरु जी के पास। गुरु गद्दी क्या है? इस कपि को, इस वानर को, वानर जाति थी, ऐसा नहीं जो झूमते रहे पेड़ से एक जाम के लिए ही कू करते रहे, उन बंदरों को हनुमान जी के साथ, तो हनुमान जी को उन बंदरों के साथ नहीं जोड़ना है। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण थे, शास्त्र का ज्ञान था हनुमान जी में। अगर ऐसा नहीं होता तो हनुमान जी को भेजा था सुग्रीव ने कि जाओ दो भाई आ रहे हैं, परीक्षा लो कौन है, कोई बाली के भेजे हुए राजकुमार तो नहीं हमको मारने आए। तो हनुमान जी ने राम जी के साथ जितनी देर बात की एक शब्द भी असंस्कृत नहीं बोला। जब लक्ष्मण से राम जी ने बात की तो लक्ष्मण ने कहा कि हनुमान बड़ा भारी संस्कृत का ज्ञाता है, विद्वान है, तो ये क्या एक एक पेड़ पत्ते पर हिंकू हिंकू करने वाले थोड़े विद्वान हो सकते हैं। जयराम जी की। तो बेचारे हनुमान जी को इन हिंकू हिंकू वालों के साथ मत छोड़ो। अतुलित बल धामा ज्ञानी नाम अग्रगण। हनुमान जी के लिए छेड़ दिया विश्वामित्र को कि देखो ये कर राम, इस हनुमान को कल सूर्यास्त न देखना चाहिए, मृत्यु दंड में आदेश देता हूं। क्या समझता है? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। प्रिय प्रिय सेवक को स्वामी मृत्यु दंड देंगे? अगर देते हैं तो सेवक के साथ अन्याय हो जाता है, और नहीं देते तो रामचंद्र जी गुरु आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे? रघुकुल रीत सदा चल आई, गुरु को सिर टेका मत्था टेका, अब तो जो गुरु का मार्गदर्शन हो वही करेंगे। ये तो गुरु दीक्षा के समय हो गया, अब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे? अगर नहीं देते मृत्युदंड तो गुरु आज्ञा उल्लंघन का पाप लगता है, और मृत्युदंड देते हैं तो एक सतशिष्य की हत्या करने का दोष आता है। राम जी ने क्षण भर शांति से गोता मार कर कहा कि मुनिवर जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा। अयोध्या में हाहाकार मच गया। सरजू के किनारे रामचंद्र जी हनुमान को आखिरी श्वास गिनाते गिनाते दे देंगे, उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से स्वधाम पहुंचाने की टिकट। राम तुम्हें उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से इस हनुमान का वध करना है, दूसरे कोई बाण नहीं चलाने। जिन बाणों से लंकेश को यमपुरी पहुंचाया था उन्हीं बाणों से इसे चाहे अपनी पुरी पहुंचाओ या यमपुरी पहुंचाओ, लेकिन हनुमान को कल संध्या होते होते दूसरा दिन हो गया। रात दूसरा दिन की प्रभात हो उसके पहले हनुमान जी ने तो नारद जी के खोज लिया कि महाराज अब क्या? बोले चिंता न करो, मैं जानता हूं कैसे जलाया जाता है और कैसे बुझाया जाता है, आरंभ कैसे किया जाता है और संकेला कैसे जाता है, मैं जानता हूं। प्रभु तुमको बाण मारेंगे तो तुम सामने वार करोगे तो सेवक मिट जाओगे। एक बार मत्था टेक लिया, स्वामी मान लिया, उसके सामने होना विरोध करना इससे तो मर जाना अच्छा, और ऐसे चुपचाप मूंगे होकर बाण का शिकार होकर मर जाना ये भी तो ठीक नहीं। हनुमान तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बीच का रास्ता देता हूं। तुम राम पर वार नहीं करोगे लेकिन राम जब बाण भेजेंगे तो तुम बस राम के नाम का उच्चारण करके अपनी गदा से रक्षा कर लेना। और देखो भगवान का मंत्र जपते समय तुम भावना अमुक अमुक जगह पे लाना तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता। बाण छूटे तीक्ष्ण और हनुमान के तरफ आ रहे, राम की गदा की छाया ही पड़ते बाण वहीं छू, राम गदा को टच भी नहीं करते, राम वहीं से वो गिरे। एक 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 करते राम के सारे बाण जब खत्म हो गए और विश्वामित्र और पूरी सभा देखने लग गई, दंग हो गया। देवता लोग आकाश में स्थित है कि स्वामी और सेवक के बीच युद्ध, और सेवक विरोध नहीं कर रहा है केवल रक्षण कर रहा है, और स्वामी के नाम से ही अपना रक्षण कर रहा है। नाम बढ़ा के नामी बढ़ा, नाम की महत्ता बताए जा रहे हैं मानो नारद जी। राम के सारे बाण खत्म हो गए। विश्वामित्र ने कहा कि राम मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तुम झूठ मूठ में बाण मार रहे हो, लेकिन इस कपि के पास ऐसी शक्ति कैसे आ गई? राम ब्रह्मास्त्र का आवाहन करो, अमोघ होता है, अमिट होता है, उसी ब्रह्मास्त्र से इसको पहुंचा दो। राम जी आकाश के तरफ हाथ करें और संकल्प करें उसके पहले, अब बिगड़ती बाजी को सुधारने के लिए नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, नाम बड़ा के नामी बड़ा, देखो नाम बड़ा है और उस नाम के प्रभाव से सारे नामी के बाण फेंके हुए, खुद राम फेंक रहे बाण, फैल हो गए नाम की महिमा। महाराज अभी अगर ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को मरवा दिया तो आपको कलंक लग जाएगा कि राम के सेवक की हत्या करवाने वाले अगर कोई कठोर, और लोग क्या क्या बोलेंगे, महाराज आप ऐसा घोषणा कर दीजिए कि हम इस हनुमान के अपराध को क्षमा करते हैं। संत को क्षमा का क्षमा देना संत के लिए शोभनीय काम है और संत क्षमा का प्रत्येक विग्रह होते हैं। अब महाराज आप में भी तो क्षमा का विग्रह है, केवल आप उस अपने क्षमा के स्वभाव को घोषित कर दीजिए, जय जयकार भी हो जाएगा और इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों से ये घटना आएगी, नहीं तो महाराज कलंकित हो जाएगा इतिहास। बोले नारद जी तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, निर्दोष हृदय तो होता है संतों का। राम राम छोड़ो, ब्रह्मास्त्र का आवाहन न करो, हम हनुमान को क्षमा करते हैं। हनुमान जी को इशारा कर दिया कि पकड़ ले पैर विश्वामित्र, हनुमान जी विद्वान भी है और उतने नम्र भी है, जितने नम्र है उतने बुद्धिमान भी है, जितने बुद्धिमान है उतने बलवान भी है। कहीं देखा बलवान है तो बुद्धि कम होती, कहीं बुद्धिमान होते तो बल में ठन ठन पाल होते, और दोनों होता है तो नम्रता में ठन ठन पाल होते, नम्रता होती तो संयम में ठन ठन पाल होते। लेकिन हनुमान जी में, एक हनुमान जी में सारे सद्गुण टिके। वातावरण में जय जयकार हो गया। नारद जी कहते हैं कि ये सारी लीला मैंने इसलिए रचाई थी कि कल सभा में कोई निर्णय नहीं हो रहा था, आज आपको प्रत्यक्ष हो गया कि नाम बड़ा के नाम ही बड़ा, राम बड़ा के राम का नाम बड़ा। तुलसीदास ने लिखा है राम न सके नाम गुण गाई, भगवान नाम में इतनी सारी शक्ति है, इतना सारे उसकी महिमा है। विज्ञानी अल्जेरिया बोलता है, मिस्टर लेजेरिया बोलता है कि हरि शब्द बोलने से इतना इतना पाचन तंत्र को फायदा होता है, ओम शब्द बोलने से ज्ञान तंत्र को फिजिकली फायदा होता है, लेकिन उस पट्टे को पता नहीं फिजिकली तो कुछ भी फायदा नहीं तुम्हारी गिनती में, आध्यात्मिक फायदा होता है उसका तो वर्णन राम जी भी नहीं कर सकते, तो दूसरों की क्या बात करे भांजे। राम न सके नाम गुण गाई, ये नाम की सत्संग की महिमा है कि भर दोपहर को तुम सुख सुविधा सोफा एसी मेसियां छोड़कर इधर बैठे और फिर भी मजा आ रहा है, ये नाम और सत्संग की महिमा है। घोर कलयुग में भी आ रही है, इस कोलाहल युग में भी आ रही है, तो उस युग में कितना होता होगा वरी यार, विचार करके देखो। नी शिव जी इसीलिए कहते गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके, सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके, सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके, सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसे सिद्धि मिलती है, दूसरे को नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सफल हो जाते हैं। नाम जप में 10 बातों का ख्याल रखना चाहिए। 10 बातें अगर नहीं करते हम, 10 अपराध नहीं करते, तो नाम कमाई बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। तो नाम जप में निंदक का संग अथवा निंदक की बातों में ना आए, न निंदा सुने न निंदक की हां में हां करे न निंदक के विचार अपने कान में आने दे। तुलसीदास जी ने कहा हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना हो वही पाप गौ घात समान। हरि गुरु निंदक का दादुर हो वही जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। रामकृष्ण को किसी ने कहा कि तुमने काली का दर्शन किया, काली से बात करते थे, काली को चखा हुआ अपना प्रसाद खिलाते थे, सूंघे हुए फूल काली तुम्हारे हाथ से लेती थी, ऐसी ऊंची भक्ति को छोड़कर तोतापुरी के चक्कर में महाराज आ गए। रामकृष्ण कहते कि ज्यादा बात मत करो, जीभ खींच लूंगा। अरे नहीं नहीं, देखो हम तो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे तोतापुरी महाराज कल फलानी माई के घर में रहे थे, उसके यहां रहे थे, खाए पिए थे, रात को वहीं गुजारा था। बोले मेरा गुरु कलाल खाने जाए तो भी मेरा गुरु मेरा नंद राय। पार्वती को सप्त ऋषियों ने श्रद्धा तोड़ने का प्रयास किया कि एक मसान में रहने वाला धतुरा भांग लेने वाला आदमी और गले में सर्प, उसके लिए तू तप कर करके मर रही, हड्डियों का पिंजड़ हो गई, तभी भी उसको दया नहीं आई। और कहां तू सुकोमल और कहां वो भूतनाथ, उसके चक्कर में क्यों पड़ी। बेटी तेरी ये दयाजनक स्थिति देखकर हमको करुणा उपजी, इसलिए हम सप्तऋषि मंडल छोड़कर तुझे समझाने को आए। पार्वती ने ऐसा कड़क जवाब दे दिया कि मुनीश्वर मुझे गुरुजी ने शिवजी के लिए बता दिया है, उसके पहले अगर आप आते तो मैं आपकी बात पर ध्यान देती। अब तो चाहे मेरे शिवजी के लिए तुम हजार दोष बताओ, लेकिन मेरा एक ही निर्णय है, सुन लो महाराज। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, रामायण में आता है, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। और वही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति की कन्या पार्वती जगदम्बा होके पूजी जा रही है, उसकी दृढ़ श्रद्धा जयराम जी की। हे मुकद्दर तू धोखा करे तो जरूर करना, एक आध कमरा दो छीन लेना, दो पांच जोड़ी कपड़ा छीन लेना, दो पांच हजार छीन लेना, लेकिन हमारी जिंदगी में से सदगुरु के प्रति श्रद्धा मत छीनना। श्रद्धा गई तो सर्वनाश, सारे पुण्य खत्म, सारी शांति खत्म, सारी समझ खत्म, करा कराया चौपट। तुम 10 साल से चले हो और जो ऊंचाई और मस्ती में आए हो, अगर सदगुरु के प्रति अश्रद्धा हुई तो आप वहीं पहुंच गए क्षण भर में जहां से तुम चले थे। कबीर जी ने कहा गुरु रस निरालो रे जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो पिए पीऊ रस, गिरे तो चकना चूर, न इधर का न उधर का, न शिष्य रहा न निगुरा रहा, उससे भी गया भी था। एक बार गुरु बनाकर फिर उसके लिए निंदा सुनना करना या उसके विरुद्ध में सोचना, इससे तो निगुरा होकर संसार में भटकना ये हजार गुना अच्छा है, ऐसा शिवानंद महाराज ने कहा, शिवानंद सरस्वती ने ऋषिकेश वाले। एक बार सदगुरु माना, मत्था टेक लिया, फिर उसके प्रति उनको छोड़ दिया या उसके प्रति अभाव आना, इससे तो गुरु न करना वो अच्छा था, निगुरा होके भटकते रहना 84 लाख जन्मों में वो अच्छा था, कम से कम वैरायटी तो मिलती, अलग अलग शरीर मिलता, ये तो फिर मेढक फिर मेढक मेढक बनकर फिर मेढक। हरि गुरु निंदा सुने ही जे काना हो वही पाप गौ घात समाना, हरि गुरु निंदक दादुर हो वही जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। ऐसा धरती पर कौन साकार व्यक्ति है, ऐसा धरती पर कौन साकार महात्मा है, ऐसा धरती पर कौन साकार भगवान है जिसके प्रति दोष करने वाले मूर्खों ने दोष नहीं खोजे हों। दोष की नजर से देखोगे तो राम में भी दोष दिखेंगे, कृष्ण में भी दोष दिखेंगे, और निर्दोष नजर से देखोगे तो कुत्ते में भी परमात्मा दिखेगा। अरे भूत में परमात्मा देखने वालों ने भूत की जगह पर परमात्मा को प्रकट कर दिया। रात्रि का समय था, नामदेव जा रहे थे कहीं से और एकाएक भूत बड़ी छाया विशाल रूप दिखाया नामदेव को डराने के लिए। लेकिन नामदेव ने देखा कि इतना विशाल, इतना लंबा चौड़ा, ये तो ठाकुर जी के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। था तो भूत। नामदेव ने कहा, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो मात, धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। सुर नर मुनि जन गीत तुम्हारे गाए, ब्रह्मा विष्णु ध्यान तिहारो लगाए, मोदास की बेनती नामदेव को करो सनात, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। वो भूत गायब हो गया, वहां से भगवान को प्रकट होना पड़ा। एक बार नामदेव यात्रा करने गए, यात्रा में अपना अपना खेमा तानते, टेंट तानते, और वैष्णव साधु अपने हाथ की रोटी खाते हैं। होटलों में लॉजों में खाने से कितनी हानि होती है वो जानते हैं। जैसे तैसे व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ से भोजन या वस्तु या उनके श्वासोश्वास में आने से भक्ति नष्ट होती है, ऐसा वो लोग जानते। तो अपना अपना टिक्कड़ बनाया। नामदेव ने भी अपना तीन पत्थर इधर उधर से इकट्ठे करके, थोड़े लकड़ के टुकड़ इकट्ठे करके मिट्टी की दांगी पर अपना टिक्कड़ बनाया, तवे डोढ़ा बनाया, सिंधी देन डोढ़ो माननी, बाजरी ज्वार की जो भी बनाई होगी, रोटी बनाई, रोटी पकी, लोटे के सहारे रोटी को खड़ा कर दिया पत्तल पर। नामदेव गए अंदर घी लेने को, घी की कटोरी खेमे में टेंट, इतने में काला कुत्ता आया और रोटी उठा के ले भागा। नामदेव देखा रोटी कहाँ गई, ओ उसके मुंह में, ओ काला तो मेरा शाम है, शाम चार रूप, चार हाथ वाला तो देखा, चार पैर वाला हो क्या है, ठहरो ठहरो प्रभु ठहरो, मैं जरा लगा दूं, घी लगा दूं। घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ा कुत्ते के, और कुत्ता डर के मारे तेजी भागा, नामदेव भी तेजी भागा। ऐसे रूखी रोटी नहीं खाने दूंगा ठाकुर जी, ठहरो विठल विठल थोबा थाम्बा माजे विठला थाम्बा, तुम्ही थाम्बा थाम्बा माजे विठला थाम्बा। थाम्बा थाम्बा करते, थोम्बा थोम्बा करते करते नामदेव के पैर में कंकड़ पत्थर चुभ रहे, लेकिन हृदय में वही श्रद्धा है। बनल रोटी खाओ मुरारी, गीह मखे दियई गिरधारी, एडो की न सताए खणी खोले बुधाए, ओ हो रोटी मुझी केर चुराए बिना भोग लगाए, बिना भोग लगाए, ओ रोटी मुझी केरुयो चुराए। मेरी रोटी कौन चुरा गया, बिना भोग लगा के देखा कि वो चतुर्भुजी आज चतुर्पदी होकर आया है। भक्ते 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 आखरु सच्चिदानंद परमात्मा को उस कुत्ते के अंदर से दीदार देना पड़ा। रोटी रखी और मुंह खोला और वहां से बंसीधर दिखाई दिया नामदेव की दृष्टि में। भूत से भगवान प्रकट कर दिया, कुत्ते से भगवान प्रकट कर दिया, और आज का मनुष्य जिसको गुरु मानता है उसमें दोष देखकर अपने लिए नरक पैदा कर देता है, अशांति पैदा कर देता है। अरे कम से कम 80 करोड़ आदमी में कम से कम एक आदमी तो ऐसा चुन लो कि जिसमें भगवान दिखे, जिसमें दोष न दिखे। स्वर्ग में चर्चा हो रही थी कि गंदे से गंदे व्यक्ति में भी कृष्ण गुण देख लेते, पापी से पापी व्यक्ति में भी कृष्ण कुछ पुण्याई देख लेते हैं। व्यक्ति तो क्या कहें, वस्तु भी गंदे में गंदी हो, कूड़ा कचरा में से भी कृष्ण गुण ले लेते हैं। इसीलिए कृष्ण सदा सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, पूर्ण विकसित रहता उनका चित्त। ऐसा करके देवताओं ने, देवों के इंद्र ने बड़ी भारी प्रशंसा की कि धरती पर रहने की कला श्री कृष्ण के पास गजब की है। चाहे कैसा व्यक्ति हो, चाहे कैसी वस्तु, चाहे कितना पापी अपराधी हो, लेकिन कृष्ण उधर नहीं देखते, उसकी अच्छाई देखकर अपने हृदय को अच्छा ही बनाए रखते हैं। किसी देवता को संदेह हुआ कि बुरे से बुरी व्यक्ति, बुरे से बुरी वस्तु, बुरे से बुरे पशु में भी कृष्ण अच्छा देख लेते, बुरे में बुरे पशु में अच्छा क्या देखेगा। मैं परीक्षा लूंगा, श्री कृष्ण वृंदावन की कौन सी गली से जा रहे हैं, देवता ने देख लिया। सकड़ी गली, अभी भी नालियां चल रही, सुधरे हुए युग में भी नालियां हैं तो उस जमाने में कितनी होगी सोचो। सकड़ी गली से कृष्ण पसार होने वाले, वहां देवता ने कुत्ते का रूप धारण कर लिया। कुत्ता कैसा? प्यार करने वाला नहीं, कहराने वाला कुत्ता, पूंछ कटी, शरीर पर चांदे पड़े हैं, घाव लगे, उनमें कीड़े खदबदा रहे, बगैयां भिन भिन आ रही, कान कटा है, पूंछ कटी है, शरीर में घाव पड़े हैं, कीड़े खदबदा रहे, रक्त और पीप बह रहा है, उसमें क्या अच्छाई देखते कृष्ण? मुंह फटा है, आंख न बंद है न खुली है, बस मूर्छित सा है, प्राण चल भी रहे। ग्वाल गोपों ने कहा, कृष्ण देखो ये कुत्ता कितना भागा है, ये पाप का फल भोग रहा है। कृष्ण ने कहा, पागल, उसके दांत चमक रहे, उसका पुण्य का फल नहीं दिखता, समझ ले भांजे, ये उसके दांत चमक रहे पुण्य का फल है, उसके संग में लोगों को शांति मिल रही है उसकी महानता है, उसके दीदार से हमारा दिल खिल रहा था, ये सतगुरु की महानता है। जयराम जी की। बकने वाले निंदक तो राम जी के लिए भी बकते हैं, कृष्ण के लिए भी बकते हैं। वशिष्ठ जी बोलते, राम जी मैं जब बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या अफवाह उड़ाते मुझे सब पता है, मेरे लिए क्या क्या बकते मुझे सब पता है, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है। अब राम के जमाने में राम का राज्य, राम जिसके चरण धोकर चरणामृत लेते, ऐसे वशिष्ठ के लिए भी दोषारोपण करने वाले हतभागी अभागे लोग थे। तो इस कलयुग में अगर तुम्हारे हमारे यहां किसी के लिए कोई कुछ बगते तो हे चफिकर मत, कर्तव्यम कर्तव्यम जिकरे प्रभु, कर्तव्यम जिकरे खुदा, खुदा ताला प्रसादे न सर्व कार्यम फते भवे। औरंगजेब के भाई ने ये उपनिषद बनाई, इल्लो उपनिषद, हे चफिकर मत कर्तव्यम, हिंदू उपनिषदों का सहारा लेकर उर्दू शब्द फारसी शब्द डालकर उपनिषद बनाए। तुम फिकर मत करो, तुम चिंता मत करो, चिंतन करो अच्छाई का, चलो ऐसे हैं वैसे हैं लेकिन हैं तो आखिर मेरे देश के हैं, हिंदू तो हैं। जयराम जी की। गुण देखो, और लोग इतना हमारे हिंदू संस्कृति में इतना इतना जहर डाल रहे हैं, उनकी अपेक्षा है ये हमारे गुरु भाई तो हैं, हिंदू संस्कृति का प्रचार तो कर रहे हैं, संस्कृति तो हम हैं, हम जीवित, और नहीं तो इनके दर का हमने कुछ थोड़ा प्रसाद खाया है। अरे कुत्ता जिस घर का टुकड़ा खाता है वो पागल होता है, तभी भी उस मालिक को नहीं काटता, वो घर छोड़ के भाग जाता है लेकिन उस मालिक को नहीं काटता। हम कुत्ते से तो नीचे ना गिरे, तो 10 नाम अपराध में एक बड़ा अपराध है निंदा, हरि गुरु निंदा, शास्त्र निंदा, न सुने और न करे। अगर ये अपराध आ गया तो मंत्र का कितना भी महिमा सुनो और कितना भी प्रभाव हो लेकिन जापक को कुछ नहीं मिलेगा, कंगाल रह जाएगा। 10 है अपराध, उसमें से एक अपराध निंदा, कड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है, वो नाश करने वाला अपराध है। जैसे खीर बनाई तुमने और एक चीनी के बदले जरा सा नमक डाल दिया तो चारोली भी गई, बादाम भी गए, पिस्ते भी गए, खीर भी गया तो चावल भी गए, अथवा जरा सा नींबू निचोड़ दिया तो फिर रहा क्या? बुद्धू हलवाई का लड़का गया काशी पढ़ने और पंडित जी आए बुद्धू हलवाई के गांव, बोले मेरा बेटा पढ़ता लिखता है, खाता पीता है, मनी ऑर्डर छुड़ाता है, बोले मनी ऑर्डर भी छुड़ाता है, खाता पीता भी है, घूमता भी है, कपड़े भी पहनता है, बफ गुलाब भी बनाता है, सब कुछ करता है, खाली 2 गलतियां हैं। बोले क्या? बोले अपनी उसको अकल नहीं और मेरी बात मानता नहीं। तो क्या बचा? अब क्या पढ़ेगा वो? जब निंदा की नजर से देखेगा शास्त्र को, ईश्वर को या गुरु को, तो क्या मानेगा गुरु की बात को और क्या लगेगा मंत्र का प्रभाव उसके हृदय को? तो पहली बात है, निंदा या फरियाद के विचारों को उखाड़ के फेंक दे। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो जा फिर करता रहे राम राम, कुछ नहीं होता। राम आनंद स्वरूप तू रो रहा है, मैं दुखी हूं, कल्पना करता है तू दुखी है, वास्तव में तू तो राम की संतान है, गुरु मंत्र लिया तू तो गुरु का अंतर आत्मा बन गया। अरे पागल, फिर रो रहा है? गुरु इतने मौज में रह रहे हैं, लाखों विघ्नों के बीच, लाखों विघ्नों के सिर पर पैर रखते हुए नाच रहे हैं, कृष्ण काली पे नाच रहे, ऐसे तेरा गुरु कलयुग में लाखों विघ्नों के काली पर नाच रहा है और तू ये कर रहा है? दूसरी बात, आसुरी प्रकृति वालों को नाम की महिमा बतलाना ये भी एक विघ्न है, नाम अपराध है। तीसरा अपराध है हरि और हर में भेद देखना, शिव में और भगवान में भेद देखना, हरि में मेरा तो भगवान कृष्ण है, ये तो शिवजी वाले हैं, ये तो शैव है, मैं तो वैष्णव हूं। अरे बुद्धू, एक ही चीज है, भगवानों में भेद मत देख। चौथा अपराध है वेदों पर अविश्वास करना, वैदिक मंत्र बोले ये तो गडरिया लोगों ने गाया है, ओम यज्ञे न यज्ञ। अरे गडरिया ने नहीं गाया, तुम्हारे बाप ऋषि मुनियों का अनुभव है, भगवान का ये है अपौरुष वेद है, वेदों में कभी अविश्वास नहीं करना। अगर वेदों में अविश्वास करता और जप करेगा तो नहीं फलेगा, गुरु की निंदा करता सुनता है जप करेगा नहीं फलेगा। पांचवी बात, शास्त्रों पर अविश्वास, जप के फल को खा जाएगा। छठी बात, गुरु पर अविश्वास, गुरु की आज्ञा मिले क्या करें, करें नहीं करें, हर पर गुरु पे अविश्वास, गुरु आज्ञा पे अविश्वास, ये भी जप के फल को खा जाता, निगल जाता। सातवां अपराध है कि नाम महिमा को ऐसे ही जानना कि क्या इतना थोड़ी होगा, ठीक है मान लिया, लेकिन अंदर में स्वीकारना नहीं, इससे भी मंत्र का सामर्थ्य कुंठित हो जाता है। आठवां विघ्न यह है कि नाम के भरोसे चलो पाप कर लेंगे, फिर थोड़ा जप कर लेंगे, पाप नाश हो जाएगा, खाओ पियो मौज करो, फिर थोड़ा जप कर लेंगे तो माफी नहीं होगी। गलती हो गई है तो वो माफ हो जाएगी, लेकिन जानबूझ के गलती कर और फिर मंत्र जप के ठीक कर लूंगा, ना ही होइत। नौवां अपराध है कि विहित कर्म न करना, सत्कर्म छोड़ दे, मैंने तो मंत्र लिया है अब मंत्र जपता हूं, मुझे सेवा कार्य से क्या, मैं तो माला लेके बैठा हूं, मुझे संध्या से क्या, मुझे प्राणायाम से क्या, मुझे शास्त्र पढ़ने से क्या, मुझे सत्कर्म करने से क्या, मुझे हफ्ते दो हफ्ते में उपवास रखने से क्या, मैं तो बस मंत्र लिया बस। विहित कर्म का त्याग न करे। और दसवां, नाम के साथ अन्य साधनों की तुलना न करे कि मेरे नाम के बराबर फलाना साधन है कि नहीं, फलाना साधन है कि नहीं, गुरु मंत्र की बराबरी यज्ञ से हो सकती क्या, गुरु मंत्र की बराबरी, गुरु मंत्र की किसी से बराबरी ना करे, सोचे ही नहीं। पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है कि अपने पति की बराबरी किसी दूसरे के पति से ना करे। अरे मेरा पति जैसा ही पति है इसका, तो तू पतिव्रता नहीं है जयराम जी की, ये मेरे पति जैसा ही लगता है छी। अरे पक्के जो भक्त हैं, जो श्याम के भक्त हैं, वो बलराम को कुछ नहीं मानते, कृष्ण की जो भक्ति करते थे वो बलराम को, बलराम है तो है लेकिन हमारे लिए तो श्याम ही श्याम है, ऐसी दृढ़ता। ये दस नाम अपराध से रहित कोई मंत्र जपता है, नाम जपता है, तो नाम और नामी अभिन्न हो जाता है। मंत्र तुम्हारे जीव कोशों में मंत्र का प्रभाव पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि पर पड़ता है, तुम्हारे मन पर पड़ता है, तुम्हारे स्व पर पड़ता है, और तुम्हारा नकली स्व मिटता जाता है और असली आत्मिक स्व जगता जाता है और तुम ईश्वर के साथ अभिन्न तत्व का साक्षात्कार कर लो। सत्संग का त्याग महान पापों का फल है और महान पाप होता है निंदा। जो निंदा सुनी आखी तो सत्संग से पीट, और किसी कारण से अगर सत्संग में आ गया महान पुण्यों का फल है, कोई न कोई ऐसा सत्कर्म फिर काम दे रहा है ताकि सत्संग में तू आ सका है। किसी का सर्वनाश करना हो तो उसको गुरु और शास्त्र के प्रति विरोध पैदा कर दो, देर सवेर उसका सर्वनाश हो जाएगा। और किसी का सर्व कल्याणमय करना है तो गुरु और शास्त्र के तरफ उसका मन लगा दो, देर सवेर उसका 21-21 कुल तर जाएगा। बंगाली में नाम जप की साधना को शोधन बोलते हैं। शोधन संशोधन अंग्रेजी में सेल्फ रिसर्च, अपने आप की खोज। बंगाली लोग तो ईश्वर से भी ज्यादा गुरु का महत्व जानते हैं, बोलते हैं कि ईश्वर ने हमको शरीर दिया, काम क्रोध लोभ मोह और कर्म के बंधन के साथ भेजा। ईश्वर तो हमको कर्म का फल देता है, लेकिन गुरुजी हमको कर्म का फल नहीं देते, अपनी साधना का फल देकर हमको महान बना देते हैं, अपनी करुणा का फल देकर हमको महान बना देते। सहजूबाई भी ऐसा मानती है, हरि तज दारू गुरु को न तज। और कुछ ऋषियों ने ऐसा गाया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। गोरखनाथ ने कथा सुनाई अपने शिष्यों को, उसके पहले उन शिष्यों को गोरखनाथ लेके जंगल में, और एक ऊंची इमली बोले जो मेरा पक्का शिष्य है इमली की आखिरी डाल पे पहुंच जाए। बोले मैं पक्का चढ़ो। चढ़ने को तैयार हुए, गोरखनाथ ने बराबर त्रिशूल गाड़ दिया। बोले ऊंचे डाल पर चढ़कर इस त्रिशूल पर जंप मारे, बराबर इस त्रिशूल पे गिरे, वही मेरा पक्का शिष्य। सब इधर उधर देखने लगे, BA CA सब खिसक गए, जयराम जी की सब खिसकते गए। लेकिन एक सत्शिष्य था कि वैसे भी तो मरेंगे, जब गुरु के त्रिशूल पर जंप मार के मरेंगे तभी भी तो गुरु के लिए मरेंगे। चलो करोड़ों बार मरे तो एक बार गुरु के लिए मर गए तो क्या है। त्रिशूल गाड़ा गोरखनाथ ने और वो ऊंचे डाले पे पड़ा, और गुरु जी तो दूर चले गए। उसको ये न रहे कि गुरु जी गोद में ले लेंगे, गुरु जी जानबूझ के दूर चले गए। शिष्य का टोला भी गुरु के पीछे, लेकिन गुरु की नजर और गुरु का हृदय तो उस शिष्य पर था जो आज्ञा पाल रहा था। उसने जय गुरुदेव करके अपने को फेंका उस त्रिशूल पर, गोरखनाथ के अदृश्य संकल्प शक्ति ने उसको त्रिशूल के ऊपर गोद में ले लिया। वो सत्य शिष्य सतगुरु बन गया और बाकी सब 2-5% श्रद्धा रखकर गाड़ी घसीटते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं त्रिशूल गाड़ूंगा और तुमको जंप करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, तुम फिक्र मत करना। फिर भी त्रिशूल गाड़ना तो पड़ेगा, जयराम जी की। वो त्रिशूल होगा, 3 शूल होंगे, कभी डांटना फटकारने का शूल होगा, कभी प्रतिकूलता का शूल होगा, कभी कुछ लांछन या निंदा का समाज का शूल होगा। ये तो आएंगे। भागवत में कहा कि जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका धन यश आदि थोड़ा हर लेता हूं ताकि उसका पूरा मन मुझ में लगे, और फिर मैं उसको अपने स्वरूप से भर लेता हूं ताकि वो मेरे नाई हो जाए। जो थोड़ा बहुत भजन करता और विघ्न बाधा आ जाता छोड़ देता भक्ति, वो भगवान का भगत नहीं है, फैसिलिटी का भगत है। वो गुरु का भगत नहीं है, सुविधा का भगत है। पता चल जाता है, थोड़ा धंधे वंदे में सेटिंग नहीं हुआ, ये हुआ ऐसा हुआ, छोड़ दिया भगवान को गुरु को। तो भगवान और गुरु का पक इतना नहीं था जितना अपने स्वार्थ का था। ये उसको मैं अनुभव कराने के लिए ऐसा देता हूं। चार अमृत वेला मानी गई है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला है। जब सत्संग सुनने को मिलता है, सतगुरु के अनुभव को छूकर वाणी आती है, वो मिलता है, वह वेला भी अमृत वेला मानी जाती है। और जब एकांत में साधक अभ्यास और जप करता है, वह भी वेला अमृत वेला है। और चौथी वेला के जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठते, वह भी अमृत वेला है। बाकी सब वेला मर रही है, मृत है, वही वेला अमृत वेला है, वही वेला जीवन में गिनी जाती। हे ए लड़के इधर आ, बेटा इधर आ, इधर आ। लड़का आया, आया भागता हुआ। पुजारी निकल ले बेटा, ले, ब्राह्मण था पुजारी, ध्यान से सुने ब्राह्मण लोग, इधर देखेंगे ब्राह्मण, ले ले बेटा ले, ये लड्डू ले, ले बढ़िया बड़े लड्डू ने, ले बेटा लड्डू, वो यज्ञ कुंड है ना, उसमें डाल और बोल दे स्वाहा। लड़के ने लड्डू मुंह में डाला, बोले आहा आहा। पुजारी बोलता रे का कर दियो, बोले महाराज स्वाहा और आहा में कोई खास फर्क नहीं है, अग्नि में डालते स्वाहा होती धुआं होता, भविष्य में पुण्य होता या सुख होता मजा आता, और यहां डाल दिया तो अभी हुआ आहा, आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। बाहर की अग्नि लकड़ी से पैदा हो रही, यहां तो ईश्वर की अग्नि है, वैश्वानर की। बोले छोरा तेरे को बोला हवन कुंड में डाल लड्डू और कह दे स्वाहा, तूने मुंह में डाल दिया, कहता आहा। महाराज ये भी तो है, ये सब किसने सिखाया? बोले महाराज जी मैं सत्संग में जाता हूँ और मैंने गुरु जी से दीक्षा ली है। बोले फिर यज्ञ हो गया मेरा, मेरा यज्ञ सार्थक हो गया, ले दूसरा लड्डू भी ले ले कर ले आहा। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। नाम जप करते समय कुछ बातों का और भी ख्याल रखना चाहिए। जब मंत्र जपे तो पूर्व दिशा बैठकर अथवा तो उत्तर दिशा बैठकर जप करना चाहिए, पश्चिम के तरफ या दक्षिण के तरफ मुंह करके अनुष्ठान या जप नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप के समय कभी कभी जप में वैरायटी हो, कभी जोर से जपे अकेले में, कभी जंप मारते हुए हनुमंत पद्धति से कीर्तन करे, कभी व्यास पद्धति से कीर्तन करे, कभी नारद्य पद्धति से कीर्तन करे। बैठकर कीर्तन कर रहे हैं तो व्यास पद्धति है, चलते चलते कर रहे हैं तो ये नारद्य पद्धति है, और जंप मारते हुए कर रहे हैं हनुमंत पद्धति, जयराम जी की। तो उस कीर्तन में भी वैरायटी होने से मन लगता है, क्योंकि बदलाहट आती है। संत शरण जो जन पड़े सोजन उधरण हार, संत की निंदा नानिका बहिर बहिर अवतार। जो संत की शरण पड़ता है उनका उद्धार हो जाता है, और जो संत की निंदा करता सुनता है सुनाता है वो बार बार माता के गर्भ में भटकता रहता है, ऐसा नानक जी ने कहा। शक्तिपात अथवा दीक्षा चार प्रकार की भी कही जा सकती है, कहीं कहीं पर तीन प्रकार का वर्णन है। स्पर्श दीक्षा, दर्शन दीक्षा, संकल्प दीक्षा, मंत्र दीक्षा अर्थात भाषण दीक्षा। स्पर्श दीक्षा जैसे पक्षी अपने अंडों को स्पर्श देते 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 उनमें पंख फूट निकले, अथवा तो जला हुआ दिया दूसरे दिए को स्पर्श करके जला दे, इसे स्पर्श दीक्षा बोलते हैं। दूसरी उपदेश से बोल कर दे, उसे भाषण दीक्षा बोलते हैं। तीसरा दृष्टि डाल दे, संकल्प से उत्थान करा दे, उसे शांभवी दीक्षा भी बोलते हैं, संकल्प दीक्षा भी बोलते हैं। और चौथा दर्शन दीक्षा, गुरु प्रसन्न होकर आत्ममस्ती में बाहर आए और शिष्य दर्शन करे, शिष्य को अंतःकरण में कुछ भाव प्रेम उभरता है, उसका पोषण होता जाता है। जैसे अंडे का पोषण होते होते अंडा पक्षी बन जाता है, ऐसे साधक का पोषण होते होते साधक सिद्ध बन जाता है। इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा दर्शन संत के, रोज नहीं कर सके तो सप्ताह में नहीं कर सके तो पाख पाख कर ही ले, काल दगा नहीं दे। सफल होते हैं वे लोग जो विनम्र होते हैं, सफल होते हैं वे लोग जो प्रसन्न रहते हैं, सफल होते हैं वे लोग जो अपनी गलती को ईमानदारी से खोज लेते या स्वीकार कर लेते, विफल होते हैं वे जटिल लोग के गलती करने पर भी गलती को गलती नहीं मानते, विफल होते हैं जीवन संग्राम में वे लोग जो दूसरों के दोष देखते हैं, और विफल होते हैं वे लोग जो महापुरुष में दोष दर्शन करते, वो जीवन संग्राम में विफल हो जाते हैं। व्यवहार दृष्टि से भले वे सब कितने भी चतुर दिखे, लेकिन उनकी चतुराई को तुलसीदास ने वर्णन किया, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वर्ण चमार, सियावर राम चंद्र। श्री कृष्ण सफल है, पूंछ कटी है, घाव लगे हैं, पीप और रक्त बह रहा है, बदबू आ रही, कीड़े खदबद कर रहे हैं, बगैया भुनकार रही है, बदबू के कारण नाक सकोड़ कर सब जा रहे हैं, और कृष्ण कहते कि इसके दांत चमक रहे, ये उसके पुण्य का फल है। सफल है वे नामदेव के कुत्ते में भी भगवान देख रहे हैं, और विफल है वे अभागे जो वशिष्ठ में, रामकृष्ण में, विवेकानंद में, राम तीर्थ में, एकनाथ में, ज्ञानेश्वर में, जीसस में, लीलासा बापू में, साईं टेऊराम में, जिन्होंने दोष देखा वे विफल रहे। लीलासा बापू को तो अभी भी लाखों लोग मान रहे, लेकिन दोष देखने वाले तो विफल हुए जीवन में। ऐसा कोई धरती पर महापुरुष नहीं हुआ जिसमें दोषी लोगों ने उनमें दोष आरोपण न किया हो। ज्ञानेश्वर के लिए तो इतना कुप्रचार किया कि ज्ञानेश्वर को रोटी बनानी है तो किसी के घर से अग्नि तक लोग उठाने नहीं देते थे, इतना कुप्रचार हो गया। और उनकी बहन को अग्नि नहीं मिले, आटा गूंदा हुआ है, ज्ञानेश्वर ने योग बल से अपनी पीठ तपा दी, पीठ पे रोटी सिकवा दी, फिर भी अंधों ने ज्ञानेश्वर की शरण नहीं ली, विरोध करते रहे कई अंधे। जिसकी आदत है दोष देखने की, दोष देखने वाला तो चांद में भी काली मन देख लेता है, और गुण देखने वाला कुत्ते में भी पुण्य का फल देख लेता है। अमेरिका खोजा था उसने, कोलंबस ने, किसी महफिल में गया फंक्शन में, अरे अमेरिका खोज लिया तो क्या बड़ी बात है, वो तो था, इसको खोज लिया। कोलंबस ने कहा ठीक है था खोज लिया, लेकिन उसके पहले तुम लोगों ने तो किसी ने खोजा नहीं। और जब मैं जा रहा था तो सब मेरा उत्साह भंग कर रहे थे कि पागल है जा रहा है, इधर सीधा जा रहा है जा रहा है, रोकने वाले थे। तो मैंने खोज तो लिया, बोले खोज लिया तो क्या था, तभी तो खोज लिया। अच्छा कोलंबस ने कहा लो ये अंडे, इस अंडे को कोई खड़ा कर दो। अब अंडा खड़ा कैसे रहेगा, सब ने जोर लगाया अंडा खड़ा करे, अंडा खड़ा करे तो ढल जाए, खड़ा करे तो ढल जाए। कोलंबस ने उन दोष दर्शक मूर्खों को प्रैक्टिकल प्रयोग दिखा दिया, बोले आप लोग सब मिलकर अंडा खड़ा नहीं कर सकते, देखो मैं खड़ा कर देता हूं। अंडा उठाकर उसको जरा सा दबा रखा ऐसा के दबा के, अंडा की नोक दब गई, खड़ा रह गया। बोले ये तो उसकी नोक दब गई कि तो खड़ा रहेगा, तो तुमने क्यों नहीं दबाई, तुम तो नहीं कर सके। जब हो जाता है तो आसान लगता है, लेकिन करने की अकल मिलना भी तो ये ईश्वर की कृपा है। दूसरा एक कवि था यूरोप में, मिस्टर मूर, थॉमस मूर, उसकी कविता, वो अगर महफिल में नहीं तो महफिल फीकी, इतना वो प्रसन्न चित रहता था, ऐसे सुंदर सुंदर जॉक्स बोलता, लोग हंसते। तो किसी महफिल में एक सेठ था, तो उस सेठ की कोई खुशामत नहीं करे, थॉमस मूर को तब सब मान देते थे। तो सेठ ने एक स्टंट बनाया, बोले मिस्टर थॉमस मूर, हमने सुना था तुम्हारा बाप बहुत गरीब था, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन ही वॉज योर फादर वॉज। थॉमस मूर समझ गए कि मेरी प्रशंसा इसको खटकती है, बोले हां मेरे पिताजी गरीब थे, साधारण थे। बोले मिर्च मसाले की सेलिंग करता था खाली, बोले हां। थॉमस मूर ने फिर उत्तर फिर उसके ऊपर मारा एक दाव, बोले मैंने सुना था तुम्हारे सेठ तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, हर आदमी बोलेगा अच्छे थे मेरे पिता, बोले हाँ। और वो सबको मिठास देते थे, मेरे पिताजी तो मिर्च बेचते थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी मिर्च जैसा कुछ नहीं बेचते थे, ऑर्डिनरी नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बोले हाँ हाँ ठीक कहते। तो तुम इतने जलसू क्यों हो, तुम इतने निंदक और जलू क्यों बने, तुम्हारे बाप इतना बढ़िया थे। जयराम जी की सेठ जी को तो मुंह की खानी पड़ी। ये सब संसार की बातें ऐसी है कि झांसी की गाड़ी, झांसी की गाड़ी सुना है, एक माई गई अपने लड़के को लेकर इंक्वायरी ऑफिस पर, झांसी की गाड़ी कितने बजे जाती है, उसने कह दिया 10:17। उसका बेटा बोलता मम्मी फिर से पूछो ना, और फिर से पूछा, थोड़ी देर हुई भांकड़े पे बैठे बेटा बोलता मम्मी चलो ना फिर से पूछे, 2-5 बार पूछ लिया, आखिर वो जुझला कि बार बार पूछते हो, कितनी बार कहूं, 10:17 को झांसी की गाड़ी जाती है, खून क्यों पीते, 10:17। बोले बस इसी से मेरे बेटे का पाव भर खून बढ़ गया, 10:17 बोलते हो ना, मेरे लड़के का खून बढ़ गया। तो विनोद भी जीवन में जरूरी है, तो शांति भी जीवन में जरूरी है, ध्यान भी जीवन में जरूरी है, तो जप भी जीवन में जरूरी है, ऐसा इसके साथ साथ सत्संग भी जरूरी है, और सत्संग दाता सतगुरु का स्नेह भी जरूरी है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओ इन सब चीजों को जरूरत देते देते एक परम जरूरत को ख्याल में रखना है कि ऐसा पाले कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहे, मौत के पहले उस अमर पद को पाले। कृष्ण कहते हैं यन लब्ध्वा न चापारम्, यन लब्ध्वा न चापारम्। लाभं मन्यते न अधिकं ततः
लाभं मन्यते न अधिकं ततः
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखे गुरुणापि विचालेत जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उस योगी के मानने में भी नहीं आता ऐसा जिस लाभ में स्थिर होने पर बड़े भारी दुख से भी वह विचलित नहीं किया जा सकता ऐसा वह आत्मलाभ पाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। भगवत गीता छठा अध्याय 22वां श्लोक। मनुष्य 100 रुपये की आमदनी तब छोड़ेगा जब 200 को देखेगा तो 100 से हाथ धो डालेगा, 1000 आएगा तो 200-500 से हाथ धो डालेगा, प्राइम मिनिस्टर पद मिलेगा तो छोटे मोटे कलेक्टर पद से रिजाइन कर देगा और इंद्र पद मिलेगा तो और पदों से रिजाइन कर देगा, लेकिन इंद्र पद भी जिसके आगे कम है ऐसा आत्मपद जब मिल जाता है तो उस आत्मपद को पाकर फिर वो योगी प्राइम मिनिस्टर पद या इंद्र पद भी नहीं चाहता। ऐसा आत्मपद में स्थित योगी उसका सत्संग और उसका संग छोड़कर फिर निगुरे का या निंदक का संग करे तो ये कैसी बात है। परम लाभ पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। बोले महापुरुष का सत्संग सुनने के बाद भी फलाना आदमी ऐसा हो गया, राम तीर्थ का शिष्य, राम तीर्थ परदेश में गए, बाद में उसने तो कपड़े वपड़े साधु के उतार दिए और शादी करके पैंट पहन के बाजार में घूमने लगा, लोगों ने कहा देखो देखो तुम्हारा चेला ऐसा हो गया। राम तीर्थ ने कहा उसकी इच्छा से वो आया था, संन्यास लिया था, अब उसकी इच्छा से वो कीचड़ में गया, मैं कोई गडरिया थोड़ी हूं कि घेटे बकरों के पीछे पड़ूंगा, हर इंसान अपनी भलाई चाहे तो आए और बुराई चाहे तो जाए, इसमें मेरा क्या जाता है। हम कोई गडरिया नहीं, सब सबकी संभालो। तो गुरु करुणा करके सत्संग देते हैं, कोई आता है संभलता है तो संभले उन्नत हो, और कोई पीठ देता है निंदा करता तो वो नरक भोगेगा, इसमें मेरे को क्या।